الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلة ہے بندوں کے حقوق، اور اس ضمن میں اولاد کے حقوق پر ہمارے مسلسل سلسلے جاری تھے. اولاد کے حقوق میں سے ایک اہم حق بچوں کو اسلامی آداب سکھانا. ایک آدابی زندگی ہے جن کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کا تعلق عرف کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ ہے، اور اسی کا ایک حصہ اسلامی آداب ہوتے ہیں کہ عام زندگی میں جو انسان کے معمولات ہیں اس میں اسلام کی تعلیمات کسی شے کے بارے میں کیا ہے. جہاں کوئی خاص طریقہ بیان کیا گیا وہاں پر وہ سکھایا جائے اور اس کو فالو کیا جائے، اور جہاں کوئی طریقہ نہیں سکھایا گیا اور کسی شے کے بارے میں بطور خاص بیان نہیں کیا گیا تو وہاں جو قانون، جو معاشرہ، جو رواج اور جو لوگوں کا طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کیا جائے. تو یہاں ہماری گفتگو ہے اولاد کی اسلامی تربیت کے حوالے سے. زندگی کے اکثر و بیشتر معمولات کے بارے میں دین کی بڑی واضح اور صاف تعلیمات موجود ہیں، اور اولاد کی یہ تربیت کرنا یہ والدین کی ان ذمہ داریوں میں سے ہے اور والدین پر ان حقوق میں سے ہے کہ جس کی شریعت نے بڑی تاکید بھی بیان فرمائی اور جس کی فضیلت بھی بیان کی. حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا اپنی اولاد کو تربیت دینا، اسے اچھے آداب سکھانا، فرمایا کہ یہ ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے. یعنی راہ خدا میں صدقہ کرنا اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ عمل ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھائے، اسے معاشرے میں رہنا بسنا سکھائے، اسے اچھے طور طریقے سکھائے. ایک اور حدیث مبارک ہے، وہ بھی ترمذی شریف کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنی اولاد کو جو تحفہ دیا اس میں کوئی تحفہ بھی اچھی تربیت اور اچھے آداب سکھانے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. ماں باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھا دیں. باقی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت سے دیگر ذرائع سے حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن اچھے آداب، اچھے اخلاق، اچھا کردار، معاشرتی اچھے طور اتوار وہ چیز ہے کہ جس کے پیچھے اکثر و بیشتر والدین کی تعلیم اور تربیت ہی ہوتی ہے. اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اتنا اچھا نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کے آداب بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں مینرز بہت ہوتے ہیں. اور دوسری طرف ایک شخص بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے طرز عمل میں جہالت پائی جاتی، جھگڑالو پن پایا جاتا ہے. وجہ فرق کیا ہوتی ہے کہ جس نے کم پڑھا ہے اس نے کم تو ضرور پڑھا ہے، لیکن اس کے والدین نے اس کی اخلاقیات کے اعتبار سے تربیت اچھی کی ہوتی. اور دوسری طرف جو پڑھ لکھ کے افسر بن گیا اور بہت بڑے منصب پہ پہنچ گیا لیکن اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے وہ پڑھ لکھ کے بعض اوقات بڑے عہدے پہ جانے کے باوجود اس کے رویے میں، اس کے انداز میں تکبر، انانیت، جہالت، بددماغی اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. اور اس کے پیچھے وجہ وہی جو میں نے عرض کی ہے کہ ماں باپ نے تربیت کیا کی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ والد جو اپنی اولاد کو تحفہ دیتا ہے اس میں کوئی تحفہ اچھے آداب سکھانے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو لہذا اولاد کو جو آداب اسلامی ہیں، آداب زندگی ہیں وہ سکھائے جائیں۔ پھر یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے آداب زندگی سکھانے کے حوالے سے، اس کا ایک پہلو تو میں یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیں آداب سکھانے کا ایک بہت بڑا فائدہ خود اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یا کسی عالم کے پاس جاتے ہیں یا کسی پیر کے پاس جاتے ہیں اور جا کے شکوہ کرتے ہیں کہ جناب ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، ہماری اولاد ہماری قدر نہیں کرتی، ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتی، بلکہ بعض تو یہاں تک شکایت کرتے ہیں کہ اولاد ہمیں گالیاں دیتی ہے، اور بعض اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں کہ اولاد ہمیں مارتی ہے۔ یہ حقیقی واقعات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اخبارات کے اندر آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ بعض بچوں نے ماں باپ کو قتل تک کر دیا، اور یہ آئے دن کی خبریں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آج سے کوئی جو ہے نا وہ ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ آج کل کی خبروں میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی ہوتی۔ جب صحیح تربیت نہیں کی تو اب اس کا جو برا انجام ہے وہ خود آدمی کے اپنے سامنے آتا ہے۔ جس اولاد کو آپ نے دین سکھایا ہوگا، جسے آپ نے خوف خدا دلایا ہوگا، جسے آپ نے چھوٹوں بڑوں کا لحاظ کرنا سکھایا ہوگا، جسے آپ نے بڑوں کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہ کرنا سکھایا ہوگا، آنکھ جھکا کے بات کرنا سکھایا ہوگا، وہ کبھی آپ کے سامنے نہ آنکھ اٹھائے گا نہ ہاتھ اٹھائے گا۔ لیکن جس کو ایسا کچھ سکھایا ہی نہیں تو اس کے لیے پھر سارے انسان برابر ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کسی بڑے بزرگ کے بارے میں ایک روایت ہے، مجھے ایگزیکٹلی نام یاد نہیں آ رہا لیکن واقعہ میرے ذہن میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میری پٹائی کی ہے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا کام کیا ہے، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بچے کو کوئی پڑھایا تھا، کوئی دین سکھایا تھا، کوئی ادب آداب سکھائے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا اچھا پھر کیا سکھایا تھا؟ اس نے کہا جی میں کھیتی باڑی کرتا تھا تو میں نے اپنے بچے کو بھی کھیتی باڑی سکھائی، بچہ بھی جو ہے وہ بیل کے پیچھے ہوتا تھا، کھیتی باڑی چل رہی ہوتی تھی۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ پھر تمہارا جو ہے نا وہ عذر جو ہے وہ معقول نہیں ہے، کیونکہ تمہارے بچے نے تمہیں بھی بیل ہی سمجھا، تو جیسے وہ بیل کو مارتا تھا ایسے تمہیں مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ ان بزرگوں نے جو بات کہی یہ بیسیکلی سمجھانے والی بات تھی کہ جب اولاد کو یہ بتایا ہو کہ ماں کا، باپ کا، رشتہ داروں کا، بڑوں کا کیا مقام ہوتا ہے، ان کا کیا لحاظ کرنا ہے، تو پھر بچہ اس کے مطابق کرے گا۔ لیکن اگر بچے کو ایسی کوئی چیز بتائی نہیں، بچپن سے اس کو یا تو کسی کام پہ ڈال دیا یا کھیتی باڑی پہ ڈال دیا یا اس کو اسی طرح کی چیزوں پہ لگا دیا، تو جس چیز میں اس نے زندگی گزاری ہے وہ یہ سمجھے گا باپ بھی یہی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس نے تجھے بیل سمجھا تھا اور اس نے بیل کی پٹائی کیا، باپ کی پٹائی نہیں کی۔ تو یہ ہے کہ جب اچھی تربیت نہ کی جائے تو اس کا خسارہ بہت مرتبہ خود اپنے سامنے آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اولاد کی اچھی تربیت کریں تاکہ خود آپ کا اپنا مستقبل جو ہے وہ محفوظ رہے اور اچھا رہے اور خوشگوار رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، اچھے اخلاق سکھانے ہیں، اچھے آداب سکھانے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ باپ اپنے بچے کے سامنے جو با ادب بچے ہیں ان کی تعریف کرے، ان کے اخلاق کی تعریف کرے، اور جو بے ادب اور بد اخلاق بچے ہوں ان کے اس عمل کی برائی بیان کرے کہ یہ طرز عمل جو ہے یہ اچھا نہیں، یہ برا ہے۔ تو جب بچوں کے سامنے کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو بچوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ اس تعریف والے کام کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بچوں کی نہیں، یہ بڑوں کا بھی یہی ہوتا ہے۔ بڑوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ ان کے سامنے کسی آدمی کی تعریف کریں گے کہ اس کا یہ عمل ہے تو لوگوں کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے کریں، اور بچوں کے اندر یہ خواہش زیادہ ہوتی۔ تو اب اگر بچوں کے سامنے جو با اخلاق بچے ہیں، جو آداب اسلامی پر عمل کرنے والے اور سمجھنے والے بچے ہیں، اگر ان کی تعریف کی جائے گی تو بچے خود بخود اسی شے کو اپنانا چاہیں گے۔ جیسے ایک بچہ نعت پڑھتا ہے، یہ اسلامی آداب والی بات نہیں ہے لیکن ایک جدا مثال دے رہا ہوں کہ کوئی نعت پڑھتا ہے اور اس کی تعریف کی جائے ماشاءاللہ کتنی پیاری نعت پڑھتا ہے، تو اب یہ بچہ بھی کوشش کرے گا میں بھی ایسے نعت پڑھوں۔ और अगर खुदा ना खासा एक बच्चा उछलता कूदता डांस कर रहा है और दूसरा उसकी तारीफ कर रहा है, तो ये बच्चा कहेगा मैं भी डांस करूंगा, मैं भी नाचूंगा। तो जिस अमल की और जिस अमल पर किसी की तारीफ की जाए, बच्चे उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा अच्छे आदाब की और अच्छे आदाब वालों की तारीफ करें ताकि बच्चे उसे अपनाने की कोशिश करें। अच्छा, अब कुछ आदाब जो है वो मैं अर्ज करता हूँ कि चूंकि बच्चों की तरबियत के हवाले से हमारा बतौर ख़ास ये कलाम चल रहा है और इस्लामी आदाब सिखाने के हवाले से बात है, तो बहुत से उमूर ज़िंदगी वो हैं जिसमें हमारे दीन ने बाकायदा हमारी तरबियत फरमाई है कि ये काम ऐसे करना है। तो अब वो जैसे करना बताया गया, औलाद को वैसे सिखाएं। और सिखाने का तरीका मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि सिखाने का तरीका ये है कि औलाद को बताएं भी और उनसे करवाएं भी, बताएं भी और करवाएं भी। ये दो चीज़ें जमा होंगी तो फिर बच्चे उसके आदी बन जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे इस्लामी आदाब में से एक अहम अदब यह है खाने के बारे में। खाना जिंदगी की बुनियादी तरीन ज़रूरत है और इंसान पूरी ज़िंदगी ही खाना खाता है। जब तक उसका रिस्क बाकी है उसने खाना है, उसका रिस्क ख़त्म होगा मौत आ जाएगी। तो अब खाने के जो इस्लामी आदाब हैं वो बड़ी तफसील के साथ किताबों में लिखे हुए, चंद एक वो हैं जो आप बच्चों को इब्तिदा के अंदर सिखा दें और फिर उसके बाद उसके साथ ऐड करते रहें। एक मज़ीद सिखा दिया, एक मज़ीद सिखा दिया, एक मज़ीद सिखा दिया, आहिस्ता 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 करके एक एक अदब का उसे आदि बनाते जाएं। अब खाने के अंदर वो पहला अदब कि जो इस्लामी एतबार से भी हमारी तरबियत में दाखिल है और जिसका तिब्बी और सेहत के एतबार से भी फ़ायदा है, वो है खाने से पहले हाथ धोना। खाने से पहले हाथ धोना। बच्चों का आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सरों बेशतर उनको जैसे ही खाने की तरफ आवाज़ दी जाती है कि बेटा आके खाना खा लो, बच्चों आके खाना खाओ, तो बच्चे जो काम कर रहे होते वो उसे छोड़ेंगे और सीधा खाने की टेबल या दस्तरखान पे आ जाएंगे। ये यूं कह लें कि मेरे ख्याल में इसमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, हर घर का मुशाहदा यही है कि आप बच्चे को जब खाने के लिए बुलाएंगे, बच्चा जो कर रहा होगा, वो लिख रहा है, वो उसे कलम उसने छोड़ा और भाग के खाने पे पहुंच गया। बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा है, वो वहाँ से उठेगा आके खाना शुरू कर देगा। बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा है, वो अपने खिलौने छोड़ेगा और आके खाने की टेबल पे बैठ जाएगा। और अब आप समझते हैं कि ये टॉयज जो होते हैं, खिलौने जो हैं, अब साल साल पुराने होते हैं, पता नहीं कितने जरासीम उस पर लगे होते हैं। बच्चे जिन चीज़ों के साथ खेल रहे होते हैं वो गंदी मंदी होती हैं, उसमें जो है वो जरासीम होते हैं या और जो भी है। तो अब जब बगैर हाथ धोए बच्चा खाएगा तो लाजमी बात है कि जरासीम उसके अंदर ही जाएंगे, जरासीम अंदर जाएंगे तो या पेट ख़राब या कुछ और ख़राब। तो हाथ धोना जो है ये दो एतबार से फ़ायदेमंद है। एक तो इस एतबार से कि इसका तिब्बी फ़ायदा है, ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। दूसरा इसका हदीस मुबारक में फ़ायदा बयान किया, सुनन इब्न माजा में है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये पसंद करे कि अल्लाह ताला उनके घर में खैर ज़्यादा कर दे, तो ये पसंद करे अल्लाह ताला उसके घर में खैर ज़्यादा कर दे, फरमाया जब खाना हाजिर किया जाए तो भी वुजू करे और जब उठाया जाए तो भी वुजू करे। वुजू से मुराद नमाज वाला नहीं, वुजू से मुराद है कि हाथ धो लेना, कुल्ली कर लेना। खाने का वुजू इसे कहते हैं कि दोनों हाथ धो लिए जाएं और अच्छी तरह कुल्ली कर ली जाए और ये जो मुँह का अगला हिस्सा होता है इसको धो लिया जाए। तो यह है खाने का वुजू। तो फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उनके घर में खैर ज़्यादा कर दे, भलाई ज़्यादा कर दे, उसे चाहिए कि जब खाना रखा जाए तो भी खाने का वुजू करे और जब खाने से फारिग हो तो भी खाने का वुजू करे। तो अब आप देखें कि ये वो अदब है जिसे हर शख्स पसंद करेगा और बिलफर्ज कोई करे ना करे, जब सुन्नत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका है, हमारे दीन की तालीम है, तो हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन ये वो शय है कि जिसे हर बंदा कहता है कि यार माशाल्लाह ये बंदा नफासत पसंद है, ये सफाई पसंद है, इसकी तबीयत के अंदर नज़ाफत है, इसकी तबीयत के अंदर पाकीज़गी है, सुथराई है। तो अब आप बच्चों को इसका आदी बनाएं कि खाने से पहले और खाने के बाद। तो खाने से पहले वो जरासीम का मसला और खाने के बाद यह कि हाथ लिचड़े हुए अब कपड़ों को लग गए, चादर को लग गए, बिस्तर को लग गए, किसी चीज़ को लग गए, वो चीज़ ख़राब हो गई। तो खाने से पहले और बाद में हाथ धोने की, हाथ धुलवाने की आदत जो है ये बच्चों की होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह फिर एक और अहम अदब कि जो बहुत यूँ कह लें कि एक इस्लाम की अहम तालीमात में से है, और वो ये है कि हर अच्छे काम से पहले अल्लाह का नाम लिया जाए। तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये बच्चों को बाकायदा पढ़वाई जाए, बच्चों के सामने बुलंद आवाज़ से पढ़ें ताकि बच्चे भी पढ़ लें, या बच्चों को इसका आदि बनाएं कि वो खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, और खाना मुकम्मल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसकी आदत डालें। ये यूँ समझ लें कि ये उनमें इस्लाम की एक बड़ी बुनियादी चीज़ डालने वाली बात है, क्योंकि खाना 3 मरतबा तो हमारे यहाँ मामूल है, हम आम तौर पे दुनिया में 3 मरतबा खाना खाया जाता है दिन के अंदर, और 3 से ज़्यादा मरतबा भी खाते हैं, ये दरमियान के अंदर भी कुछ ना कुछ ब्रंच हो गया तो फलां हो गया तो फलां हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं। अब अगर हर मरतबा खाने से पहले अल्लाह का नाम और आखिर के अंदर खुदा का शुक्र अदा करने की आदत बन जाए, तो यूँ समझ लें कि खुदा का नाम जो है वो दिल के अंदर जगह पकड़ लेता है। तो लिहाजा खाने से अव्वल आखिर जो है वो बिस्मिल्लाह शरीफ और आखिर में अल्हम्द की आदत डालें। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक और अदब, वो है दाएं हाथ से खाना। इस्लामी तालीम ये है कि खाना दाएं हाथ से खाया जाए, पानी दाएं हाथ से पिया जाए, किसी को कोई शायद देनी है तो दाएं हाथ से दी जाए, किसी से कोई पकड़नी है लेनी है तो दाएं हाथ से दी जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी बाकायदा ताकीद फरमाई, फरमाया कि जब तुम में से कोई खाए तो दाएं हाथ से खाए, और जब तुम में से कोई पिए तो दाएं हाथ से पिए। तो अब ये जो इसमें क्या है कि एक यूं कह ले कि बस एक फैशन बन गया, बाएं हाथ से खाना है, खड़े खड़े खाना है और खड़े खड़े के पी लेना है, और इसको बड़ा जना वो एक प्राउड फील करते हैं, क्यों? इसलिए कि अंग्रेज करते हैं बस, या फैशनेबल लोग करते हैं, और या ये है कि जो दीन से जितना दूर होते हैं वो ये करते हैं। तो अस्तग़फिरुल्लाह, ये फजीलत नहीं थी, ये मुज़म्मत की बात है कि आप गैर मुस्लिमों के और आप दीन से दूर लोगों के तरीके पे अमल कर रहे हैं, और जो आपको आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है आप उससे दूर हो रहे हैं। खाना पीना लेना देना दाएं हाथ से, एक जर्रा सी चीज़ भी खानी हो बच्चों को आदि बनाए बैठ के, और दाएं हाथ से। तो लिहाजा ये जो इस्लामी अदब है इसके ऊपर अमल किया जाए। अच्छा, इसी तरह एक और बड़ा अहम अदब है, और आप यकीन करें कि ये अदब वैसे तो ज़ाहरी एतबार से यानी कि छोटा सा अदब लगता है, लेकिन इसके असरात कितनी दूर जाते हैं मैं उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा करता हूँ। खाने के आदाब में से ये है कि खाने में कोई ऐब ना निकाला जाए, खाने में कोई ऐब ना निकाला जाए। ये कैसा खाना है, इसमें ये कम है, ये ज़्यादा है, ये खाने में ऐब निकालने की जो आदत होती है ना, ये दो तरह नुकसान देती है। एक तो ये होती है कि जिसमें ऐब निकालने की आदत पड़ जाए ना, उसको जो मर्जी खिला दो वो कोई ना कोई उसमें नक्स निकाल ही देगा, और ये नाशुक्री है, और हो सकता है दूसरे की दिल आजारी हो जाए। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा अहम है वो ये है कि खाने में ऐब निकालने की आदत ज़्यादा प्रॉब्लम तब करती है जब इंसान की शादी होती। शादी के बाद क्या होता है कि पहले तो आदमी जो है अपने घर में उसका सारा मामला चल रहा होता है, लेकिन जब बीवी के साथ ये रवैया इख्तियार करता है और खाने में ऐब जो शुरू कर देता है, तो फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ तनाव की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती। और आप गौर कर लें और आप मालूमात ले लें कि घरों के अंदर शायद तीसरे दिन जो झगड़ा होता है ना, खाने के ऊपर ही होता हो कि इसमें ये कमी है, इसमें ये ज्यादती। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी किसी खाने में कोई ऐब कोई खराबी नहीं निकाली। पसंद होता तो खा लेते, तनावुल फरमा लेते, और अगर अच्छा ना लगता तो आप छोड़ देते, खामोशी इख्तियार कर लेते, ये नहीं फरमाते कि इसमें ये खराबी है। तो ये यकीन करें कि ये ऐसी एक चीज होती है कि जिसके असर बड़ी दूर तक जाते हैं, क्योंकि खाना है रोजाना के मामूल की चीज। जब रोजाना के मामूल की शय में ऐब निकालने की आदत बन जाए तो फिर ये आदत दीगर बहुत सी चीजों में चली जाती है। तो लिहाजा उस आदत को वही रोक लिया जाए ताकि ये दूसरी जगहों तक सरायत ना करे। अच्छा, इसी तरह एक और खाने के आदाब में से जो बच्चों को सिखाना चाहिए वो है कि अपने सामने से खाएं, अपने आगे से खाएं, जो आपके करीब किनारा है वहां से खाएं। मिसाल के तौर पे प्लेट है, तो अब प्लेट के अंदर वो जो उस तरफ का किनारा है वहां से नहीं, जो अपने सामने है वहां से। बच्चों की आदत क्या होती है, हर तरफ हाथ मारते हैं, जबकि मुहज़्ज़ब तरीका और एक शाइस्ता तरीका यह है कि जो आपके सामने वहां से खाएं। और ख़ास तौर पे अगर एक प्लेट में कई अफराद खा रहे हैं, एक थाल में कई अफराद खा रहे हैं, अब उस सूरत के अंदर दूसरे के आगे हाथ डालना जो है ये मायूब है, ये ज़्यादा मायूब है। तो लिहाजा ये ना किया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक अमल, एक हदीस अर्ज़ करता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उमर बिन अबी सलमा फरमाते हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में था और बच्चा था, और मेरा हाथ पूरे प्याले में घूमता था, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से, मेरा हाथ पूरे प्याले में घूमता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ और अपने सामने से खाओ, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ और अपने सामने से खाओ। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई, और तरबियत भी किसकी है, वही जिसकी हम बयान कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये बच्चे से फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ और अपने सामने से खाओ। तो लिहाजा जहाँ ऐसी सूरत देखें, ख़ास तौर पे अपने घर में अपने बच्चों के साथ, तो वहाँ तो ज़्यादा आसानी से कहा जा सकता है। और इसके अलावा भी अगर आप अच्छी बात कहीं सिखा देते हैं तो इसे माइंड नहीं किया जाएगा, इसे पसंद किया जाएगा। एक दो और चीज़ें इसके साथ, और जिसके असरा जो है यूँ कह लें कि सिर्फ खाने की हद तक नहीं है बल्कि इंसान की ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों पर भी हैं, वो क्या है। नंबर एक, हिर्स से खाना, लालच से खाना, हिर्स से खाना, यानी खाने का ऐसा अंदाज कि जिससे लगे कि यार लगता है इसने पता नहीं खाना ही नहीं खाया कभी, या इसको कभी अच्छा खाना मिला ही नहीं। तो अब बच्चे जो ना, जिसे कहते हैं ना अच्छी खासी बेइज्जती करवा देते हैं किसी जगह, कि वो खाना ऐसे उसके ऊपर कूद पड़ेंगे और टूट पड़ेंगे कि देखने वाला यही कहेगा अच्छा लगता है बेचारों को, घर में कोई अच्छा खाना मिलता ही नहीं कभी। अच्छा, हालांकि घर में हो सकता है बच्चे उससे ज़्यादा अच्छा खाते हों, लेकिन चूंकि बच्चों की तरबियत नहीं की, तो बच्चे फिर अपनी हरकतें तो करेंगे जो जो भी उनकी उनका तरीका होता है। तो ये बच्चों को पहले सिखाएं कि हिर्स के अंदाज में ना खाएं। हिर्स का अंदाज क्या होता है, एक तो वही है कि इधर से भी उधर से भी उधर से भी हर तरफ हाथ मार दिया। एक ये होता है कि मिसाल के तौर पे जैसे अगर खीर है, अब खीर के ऊपर अगर कोई वो जैली है या कोई उसके ऊपर जो ना वो नट्स वगैरह लगे हुए, तो हर जगह से नट्स उठा लिए, तो अब क्या ये हिर्स वाली सूरत है। अच्छा, इसी तरह अगर एक थाल है, एक प्लेट है और उसमें बोटियां हैं, तो सबसे पहले बोटी के ऊपर जाना वो झपट्टा मार रहे हैं। तो ये जो तरीके हैं ये है हिर्स से खाने, या जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खाना, तेज तेज खाना, ये भी हिर्स की अलामत है। तो बच्चों को इन चीज़ों से पहले से उनको ये तमीज़ तहजीब सिखाई जाए, वरना फिर बच्चे जैसी इज्जत अफजाई करवाते हैं वो आप अच्छी तरह समझते हैं। तो एक बच्चों की तरबियत ये है कि हिर्स से खाने से रोका जाए। अच्छा, दूसरा एक और इसी के साथ मिलती जुलती चीज़ है और ये पूरी ज़िंदगी पे असर करती है, और वो है ज़्यादा खाने से रोकना। बच्चों को जब तक मज़ा आता रहेगा वो खाते रहेंगे, लेकिन अगर बच्चों को आप थोड़ी सी ये तरबियत करेंगे कि बेटा पेट जब आपका मुनासिब भर गया तो अब खाना छोड़ दें, इतना खाना कि अब खाने की गुंजाइश ना रहे, और अब एक लुकमा अंदर ना जाए और एक चम्मच अंदर ना जाए, यहां तक खाना जो है, ये जो ज्यादा खाने की आदत है ये लाजमी तौर पे सेहत के लिए नुकसानदेह है, और वक्त के साथ साथ जब ये आदत हमेशा जारी रहती है तो उसका नतीजा यही निकलता है कि ज्यादा खाने की आदतें बद बीसियों अमराज का जरिया बनती है। फिर किसी को शुगर होती है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी का जो ना जिगर का प्रॉब्लम, किसी का किडनी का प्रॉब्लम, कि जब ज़्यादा ही खाना है, ज़्यादा ही खाना है, तो फिर उसके जो नुकसान हैं वो भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा, यानी उम्र के हिसाब से होता है, इब्तिदा के अंदर तो बच्चे को अच्छी तरह पेट भर के खिलाया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो सही तरीके से हो, लेकिन उस वक्त भी ज़रूरत पे उसको रोक दिया जाए, उससे ज़्यादा नहीं। तो बाद अवकात क्या होता है, पता होता है कि बच्चे का पेट जो है वो एक प्लेट के अंदर मसलन भर जाएगा, चावल की एक प्लेट भर जाएगा, बच्चे को चूंकि मज़ा आ रहा है और वो तेज़ तेज़ खा रहा है, तो चूंकि अभी दिमाग की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, पेट तो भर गया, तो अब दिमाग की सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चा फिर अगली प्लेट ले लेता है। जब अगली प्लेट लेता है तो अब क्या है, अब वो ज़्यादा खाने की आदत बनती। तो बच्चे की तरबियत कि वो ज़्यादा ना खाए बल्कि जितनी मुनासिब खुराक होनी चाहिए उतनी खाए। और एक खाने के आदाब में से और चीज़, और इसकी हमारे ज़माने में ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि हमारा कल्चर बड़ी तेज़ी के साथ बदलता जा रहा है, हमारा मुआशरा, हमारा पाकिस्तान का जो कल्चर है वो भी बदलता जा रहा है, और दुनिया भर का बदल रहा है, बहुत सारी जगहों का बदल चुका और हमारा बदल रहा है। और ये बदलता हुआ कल्चर कितना तबाहकुन है, इसके लिए कभी आप ज़रा मेडिकल की रिपोर्ट्स और जो हेल्थ की दुनिया में रिपोर्ट्स हैं वो देख रहे तो पता चलेगा कि सेहत लोगों की किस कदर तबाह हो रही है। वो कल्चर क्या है? वो है सेहतमंद खानों की आदत ना डालना, और जो कुछ फ्राई और तलाई और ये जो नजर आए उसके खाने की आदत डालना। जैसे हमारे यहाँ अब क्या हो गया, हमारे यहाँ फ्राई खाना जो है, फास्ट फूड जिसे कहते हैं, वो खाना इतना आम होता जा रहा है कि बच्चे जो है उनको बर्गर, उनको पिज्ज़ा और उनको फ्राई चीज़ें बस ये पसंद है। अमेरिका, यूरोप वगैरह के अंदर तो पहले ही बहुत आम है। अब इसके साथ जो ना या कोई कोल्ड ड्रिंक और साथ में जो ना ये बर्गर और पिज्ज़ा और इस तरह की चीज़ें। और इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि कम से कम हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर, जो हार्ट के प्रॉब्लम है, जो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है बढ़ते जा रहे हैं। और जिन मुल्कों से ये कल्चर आया है वहाँ इससे कितनी बीमारियाँ पैदा हो चुकी हैं, ये वहाँ की रिपोर्ट देख लें आप, यानी ढेरों ढेर। मैं एक मरतबा एक मुल्क में गया यूरोप के, तो वहां पर मुझे किसी ने बताया कि हमारे मुल्क में कि शुगर बहुत ज्यादा है ना, शुगर का मर डायबिटीज जो है बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा भाई आपके यहाँ तो खाना बहुत अच्छा होता है, यानी आपके यहाँ जो फूड का डिपार्टमेंट है वो बड़ा केयरफुल है, वो देखता है और हर एतबार से जो है ना वो सही रखता है, तो इसके बावजूद यहाँ कैसे बीमारी हो सकती इतनी ज्यादा? तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब यहाँ पर जो है ना खाना जो है उसकी क्वालिटी की वजह से बीमारियां नहीं है, उसकी क्वांटिटी की वजह से बीमारियां, यानी खाने के मयार की वजह से बीमारियां नहीं है कि नाकिस खा रहे हैं, बल्कि खाने की मिकदार की वजह से बीमारियां हैं कि ज्यादा खा रहे हैं। अब नाश्ते के अंदर ही कोई पेप्सी पिएगा और चिप्स खाएगा और फ्रेंच फ्राइज खाएगा तो फिर उसके बाद उसकी तबीयत पे जो असरात होंगे वो होंगे। तो हमारा जो मुल्क है, जैसे हमारा पाकिस्तान है, यहाँ तो क्वांटिटी क्वालिटी दोनों का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तो मिकदार भी खराब और मेयार भी खराब, तो यहाँ बीमारियां बढ़ने का रेशियो और ज्यादा है। तो लिहाजा बच्चों को शुरू से ही आप फ्रूट्स खाना, नट्स खाना, बजाय इसके कि आप टॉफियां, चॉकलेट इस तरह की चीजें खाएं, उसकी बजाय नट्स खा लें, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, इस तरह की चीजों की आदत डाल दें, ये उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। इसी तरीके से रंग बिरंगी और चीजें जो है वो प्रोसेस्ड फूड खाने की बजाय आप उनको फल खिलाएं, फल खाने की आदत डालें। तो ये चीजें जो है इनकी आदत डालना जो है ये हर एतबार से फायदेमंद रहेगा। तो ये चंद एक चीजें वो हैं कि जिनका ताल्लुक खाने के साथ था। अच्छा, अब आ जाएं एक और अमर की तरफ, वो है दूसरों के घर जाने के आदाब। किसी के घर जाएं तो वहां जाके बच्चे कैसे रहें, कैसे बैठें, क्या करें, कैसा अंदाज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के घर जाएं तो वहां घर वाले जो है ना वो दुआ करें कि या अल्लाह ये मेहमान जल्दी चले जाएं और उसके बाद दोबारा कभी ना आए। तो ये जो दुआ है, ये दुआ तभी की जाती है कि जब बच्चों की ये तरबियत नहीं की होती कि किसी के घर जाके क्या करते हैं। बच्चे किसी के घर जाते हैं, सामने वाले बिस्किट रखे, अब पता चला कि बच्चा ने एक उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चौथा, प्लेट खत्म। अब वहां पर बैठे हुए माँ बाप उसको घूर रहे होते हैं ना कि ओ ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन वो ये है कि जब घर में तरबियत नहीं की तो यहाँ घूरने से क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके से बच्चा जो कभी सोफे पे चढ़ गया, कभी इधर छलांग मार दी, कभी उधर छलांग मार दी, कभी इस शय को छेड़ दिया, कभी उसको छेड़ दिया, कभी उस बच्चे को मार दिया, तो होता क्या है कि लोग फिर कोशिश करते हैं कि यार ये वाले बच्चे हमारे घर में ना आए। और हमारे यहाँ ऐसे बच्चों की कमी नहीं है कि जिनके आने के ऊपर घर वाले दुआ करते हैं कि या अव्वल आए ना, आए तो चले जाएं और फिर दोबारा ना आए। तो लिहाजा बच्चों की ये तरबियत करें कि किसी के घर जाएं तो खाना, बैठना, रहना, मिलना मिलाना कैसे होना चाहिए। अच्छा, आदाब इस्लामी में से, इस्लामी आदाब में से एक और चीज, और वो है चलने फिरने के आदाब। चलना तो होता है, जिंदगी का हिस्सा है, इस चलने फिरने का भी तरीका है। और इस चलने फिरने से ही आगे जो है वो रोड के आदाब, सड़क के आदाब, फिर ये सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ चलने फिरने के एतबार से। चलने फिरने का एक बुनियादी सी चीज़ है वो ये है कि दरमियानी चाल चलना चाहिए। यमशूना अलल अर्दी हौना, कुरान मजीद की आयत है कि जो रहमान के बंदे हैं वो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं, वक़ार के साथ चलते हैं, आजजी के साथ चलते हैं। तो लिहाजा चलने के अंदर जो अंदाज हो वो मियाना होना चाहिए, ना तो इतना भागम भाग आदमी चल रहा हो कि लगे पता नहीं इमरजेंसी होगी कोई, और ना इतना आहिस्ता चले कि लगे पता नहीं बीमार है बेचारा। तो जो बीमार भी नहीं है और जिसको इमरजेंसी भी नहीं है, तो उसके चलने का जो अंदाज है, चाल है, वो मुनासिब और मोतदिल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अकड़ के चलना, ऐसे अंदाज से चलना कि जिससे लगे कि ये अंदाज, ये चलने की चाल मगरूराना है, मुतकब्बिराना है। तो ये चलने से पता चल जाता है जो बंदा मुतकब्बिराना अंदाज में चलता है। हम एक खास बंदे पे तो बदगुमानी नहीं करते कि भाई ये जो है ना ये मुतकब्बिर है ये, लेकिन ओवरऑल जो एक अंदाज है वो सामने आ जाता है, वो पता चल जाता है क्या है कि अकड़ अकड़ के चलना, टांगे फैला के, सीना चौड़ा करके, गर्दन अकड़ा के चलना, तो ये मुतकब्बिराना अंदाज है। और कुरान मजीद में इससे बितसरी मना फरमाया गया है। अकड़ के चलना, तकब्बुर से चलना, फख्र गुरूर से चलना, कुरान पाक की आयत बाकायदा इस बारे में कि ऐसा ना चले। फरमाया जमीन में इतराता हुआ ना चल, जमीन में अकड़ के ना चल। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबरुगल जिबाल तूला, ना तो तुम जमीन को फाड़ सकोगे और ना बुलंदी में पहाड़ों पे पहुंच सकोगे। यानी इतना अकड़ के टांगे मार रहे हैं जमीन के ऊपर तो जमीन फट नहीं जाएगी, और इतनी गर्दन अकड़ा के चल रहे तो पहाड़ों से ऊपर नहीं चले जाओगे। जमीन तुम्हारे इस अकड़ से ज्यादा मजबूत है और पहाड़ तुम्हारी इस गर्दन से ज्यादा ऊंचे हैं। तो अब आप देखें कि ये कौन सा अदब है कि कुरान बयान फरमाता है कि ऐसे ना चले, आजजी के साथ चलना चाहिए, बावकार अंदाज में चलना चाहिए। तो लिहाजा बच्चों को ये सिखाया जाए कि अकड़ के नहीं बल्कि एक तरीके से एक अच्छे महजब अंदाज में चलना चाहिए। अच्छा, इसी तरह बाज लोगों को ये आदत होती है कि चलते हुए जो है ना जो शायद सामने आएगी ठुड्डा मारेंगे, उसे पाँव मारते जाएंगे, और ये बच्चों में ज्यादा होती, और बच्चों की आदत बनकर ही बड़े होने के बाद ये आदत बाकी रहती। दरमियान रास्ते के अंदर जो छोटी मोटी चीज आ गई उसको ठोकर मार दी, जूता मार दिया उसे। ये क्या है, बखामखा फजूल, एक आप मकाना सी हरकत। तो बच्चों को ये सिखाएं कि ये वाले काम नहीं करने। अच्छा, फिर इसके साथ चलने के अंदर एक और चीज कि गली में या सड़क में साइड में होके चलना चाहिए। ये जो दरमियान में होके चलना होता है ना, आप यकीन करें कि ये इंसानों का नहीं, ये जानवरों का काम होता है। आपने देखा कभी कोई भैंस जो है वो बिल्कुल साइड में होके चल रही है, या आपने किसी बकरी को देखा कि वो बिल्कुल साइड में होके चल रही है ताकि जरा दूसरे वाले भी गुजर जाए? नहीं, गाय भैंस बकरी बिल्ली कुत्ता उनको कोई मसला नहीं है, वो तो जहां उनका दिल कर रहा होगा जा रहे होंगे, क्योंकि उनको तो मैनर्स नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर चलने वालों का अंदाज भी इंसानों वाला कम होता है और ये जरा भैंस बकरी वाला ज्यादा होता है। खड़े होना है तो बिल्कुल गली के दरमियान में करके खड़े होंगे, बाइक वाला आएगा, कार वाला आएगा, वो आके हॉर्न बजाएगा तो फिर ये मौसूफ मुड़ के देखेंगे, अच्छा चलो ठीक है साइड में हो गए, पहले साइड में होकर बैठ जाओ, पहले साइड में होकर खड़े हो जाओ। ये ऐसी अजीबोगरीब सी आदत है। अच्छा, इसी तरह किसी ने गाड़ी खड़ी करनी है, साइड में नहीं खड़ी करेगा, वो दरमियान में खड़ी करके बातें करेगा। अब पीछे से कोई आके हॉर्न बजाएगा तो उसको समझ आएगी, ओहो अच्छा अच्छा चलो जी अब साइड में कर लो। मोटरसाइकिल वाला बिल्कुल दरमियान में खड़ी करेगा। तो ये जो रंग बिरंगी सी आदत हमारे मुआशरे में है, यानी यूं कह लें कि रोड सेंस जिसे कहते हैं ना, ट्रैफिक सेंस, रोड सेंस, ये तो बिल्कुल यूं कह लें कि इसका तो सफाया बिल्कुल। कुछ शाजो नादिर कोई होगा हजारों लाखों में चंद अफराद के जिनको ये पता होगा कि यार चलना कैसे होता है। तो बच्चों को ये सिखाएं कि गली में चलना है, रोडों पे चलना है, साइड में चलें। एक तो ये है कि एक्सीडेंट से बचेंगे, खुदा ना खासा बाइक तेज आ रहे होते हैं, बाइक चलाने वालों को जितना शऊर है वो आपको पता ही है, तो बाइक चलाने वाले, गाड़ी वाले, तो एक तो उनके एक्सीडेंट से बचेंगे। दूसरा ये है कि इधर वैसे अच्छा तरीका है कि आप साइड में चलें। फुटपाथ बने होते हैं लेकिन अव्वल तो फुटपाथ पे कब्जा होता है, तो फुटपाथ पे जगह ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई चल सके। और दूसरा, अगर बने भी होंगे तो हमें शौक यही है कि सड़क पे चलना है, हम फुटपाथ पे नहीं चलेंगे। तो ये हमारा एक मजमूई तौर पे हाल है। तो चलने के अंदर इस चीज़ का ख्याल करें कि साइड में चलें। इसी तरीके से फिर अगर عورتیں جا رہی ہیں تو اس سے ہٹ کے چلے، وہ نہیں ہے کہ عورتیں آ رہی ہیں تو درمیان میں گھس کے نکل گئے. تو بچوں کو بھی سکھائے، خود بھی اس کے اوپر عمل کرے. اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کی ایک عجیب سی عادت ہوتی ہے پاؤں گھسیٹ کے چلنے کی، اور بچوں میں بہت ہوتی کہ جوتا گھسیٹ کے چلیں گے، اور اتنی بری آواز اس سے پیدا ہوتی ہے کہ علمان والحفیظ کیا بتائیں. لیکن بس وہ عادت ہے، بلڈنگ میں جا رہے ہیں، گلی پہ جا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، ہر جگہ گھسیٹ کے چلیں گے. اور ان کو ماں باپ سکھائیں بھی نا تو ایک آدھ مرتبہ کبھی بول دیں بیٹا پاؤں اٹھا کے چلتے، بیٹا کہتا اچھا جی آپ چل لو، بچے نہیں چلیں گے. یہ وہ عادت ہے جو اتنی مکروہ قسم کی لگتی ہے اور اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو بھائی بچوں کو اتنی تو انسانیت سکھا دے کہ ان کو چلنے کا تو طریقہ پتا ہو کہ پاؤں اٹھا کے چلتے ہیں. تو یہ پاؤں اٹھا کے چلنا، یہ بچپن سے عادت ڈال دیں گے تو یہ عادت انتہائی پختہ ہو جائے گی. میری عادتیں بہت ساری چیزیں ہیں بچپن سے والدین نے سکھائی ہوئی ہے، اب پوری زندگی میرا پیچھا کر کے دیکھ لیں آپ کو کبھی مل جائے کہ میں پاؤں گھسیٹ کے چلوں، کیونکہ بچپن سے سکھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے تو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن باقی آپ کو اچھے خاصے بڑی عمر کے لوگ ملیں گے، سینس ہی نہیں ہے چلنے کی، گھسیٹ کے چلیں گے پاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے سکھایا نہیں، یا سکھایا ہے تو یہ موصوف ہی اتنے ذہین تھے کہ سیکھا ہی نہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کا بھی خیال کریں. اچھا، ایک اور چیز، اور وہ بھی خاص طور پہ سیڑھیاں چڑھتے اترتے یہ زیادہ سامنے آتی ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ مسجدوں کے اندر بھی بہت مرتبہ دیکھا ہے، وہ ہے زمین پر زور زور سے پاؤں مارنا، دھم دھم کرتے ہوئے جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھنا، اترنا، آنا جانا. تو اب یہ عادت وہ ہے کہ جسے عقل انسانی کہتی ہے کہ یہ جاہلانہ عادت ہے، اور یہ ایسی عادت پکی ہوتی ہے کہ شاید و باید ہی جو ہے نا وہ کوئی بچوں کو روکتا ہو اس چیز سے کہ بیٹا اس طریقے سے نہیں چلتے. اور میں تو روزانہ جو ہے نا کسی نہ کسی جگہ اس کا مشاہدہ ہو ہی جاتا ہے کہ آتے جاتے سیڑھیوں کے اوپر جو ہے وہ بچے جیسے چڑھتے ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی کہ وہ کسی دنیا دار کے بچے ہیں یا دیندار کے بچے ہیں. دنیا دار کے بچے بھی اسی طرح دھم دھم کرتے ہوئے چڑھ رہے ہیں، دیندار کے بچے بھی اسی طرح جاہلانہ انداز میں چڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چلنے کا انداز ہے کہ پاؤں زمین پر زور سے نہیں مارنا چاہیے. زور سے مارنا جو ہے ایک تو ویسے ہی بھی جناب آپ کو تکلیف دینا ہے، اور دوسرا سوائے شور کے اور یہ کچھ بھی نہیں. تو یہ چند ایک چیزیں جو ہے وہ میں نے عرض کیا اس حوالے سے اسلامی آداب. اور میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ آپ یقین کیجئے ہمارا حال ویسے تو بقیہ چیزوں کے اندر بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. عقیدے کے اندر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، لیکن وہ ایمان کے جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ ذرا شاید و بایدی ہیں، وہ نظر نہیں آتے. عبادات کے اندر بھی ہمارے یہاں کمزوری ہے، لیکن تب بھی مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں. ٹھیک، حلال و حرام کا فرق بھی ایک تعداد کر لیتی ہے، ایک نہیں کرتی. لیکن یہ جو آداب زندگی ہیں، یہ جو اسلامی آداب ہیں، معاشرتی آداب ہیں، اس میں تو یوں کہہ لیں کہ اگر وہاں ستیہ ناس ہے نا تو یہاں سوا ستیہ ناس ہے. یہاں کی تو حالت ہی بالکل پتلی، گھر میں، باہر، روڈ پہ، سڑک پہ، گاڑی میں، ٹریفک میں، مسجد میں، ہر جگہ پہ جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے وہ کسی طور پہ کوئی باشعور، مہذب اور شائستہ معاشرہ نہیں شمار کیا جا سکتا. ہم بیرون ملک جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر یقین کریں یہ نہیں کہ امیر ملکوں میں، غریب ملکوں کے اندر بھی بہت سی چیزیں معقول ہوتی ہیں. اپنے ملک میں قدم رکھتے ساتھ اگلے سیکنڈ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ملک زندہ باد، اپنے ملک میں پہنچ گیا. نہ قطار، نہ جو ہے لحاظ، نہ صفائی، نہ کچھ اور، ساری کی ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی. تو ہمارے جو حالت ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ خراب ہے. تو لہذا اپنی تربیت بھی کریں، اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں. ہمارا معاشرہ لگے کہ انسانی معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ لگے کہ اسلامی معاشرہ ہے، ہمارے یہاں لگے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کو ان کے دین نے، ان کے قرآن نے، ان کی احادیث اور سنت نے ان کو یہ اچھے طریقے سکھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حقوق العباد آہ ہوگا میرا